लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत आज हम युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरित पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित है का समापन करेंगे। क्रिस्तुस विवित के 9वें अध्याय का अंतिम भाग युवाओं को सुनने और सहचर्य का जिक्र करता है। श्रोताओ, बहुत से पुरोहित, धर्म सामाजिक भाई बहने, लोक धर्मी, व्यवसायिक और शिक्षित सक्षम युवा गण हैं जो युवाओं को उनकी बुलाहट के आत्म परीक्षण में मदद कर सकते हैं। जब उन्हें इस संदर्भ में युवाओं और दूसरों की सहायता करने को निमंत्रण दिया जाता है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने में दूसरों को सुनने की क्षमता रखें। सुनना तीन खास और पूरक संवेदनशील बातों की मांग करती है। प्रथम प्रकार की संवेदनशीलता व्यक्ति से संबंधित है। इसका तात्पर्य उस व्यक्ति को सुनने की आवश्यकता है जो अपनी बातों को व्यक्त करते हुए अपने व्यक्तिगत बारे में कहता है। सुनने की यह तत्परता हमसे दूसरों के लिए समय देने की मांग करती है। हम जितना समय व्यक्तियों के लिए खर्च करते हैं उससे अधिक हमें चाहिए कि हम उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि हमारा समय उनके लिए है। वे उस समय का उपयोग करते हुए उन सारी बातों को कह सकते हैं जिन्हें वे कहना चाहते हैं। दूसरे व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि हम उसे तर्कहीन रूपों में बिना आहत या आश्चर्यचकित थके सुन रहे हैं। हम इस तरह के सुनने का उदाहरण यीशु ख्रिस्त में पाते हैं। वे अपने चेलों के साथ चलते जो एमाउस की राह उल्टी दिशा में चल रहे होते हैं। जब यीशु उनसे कहते हैं कि वे आगे चलने की सोच रहे हैं तो वे इस बात का अनुभव करते हैं कि उन्होंने उन्हें अपना समय रूपी उपहार दिया है, अतः वे उन्हें बदले में अपना समय देने की सोचते और उन्हें अतिथि के रूप में अपने साथ बुलाते हैं। ध्यान पूर्ण और निस्वार्थ भाव से दूसरों को सुनना दूसरे के प्रति आदर की एक निशानी है, चाहे उनके जीवन के विचार या उनके जीवन का चुनाव कुछ भी क्यों ना हो। दूसरी तरह की संवेदनशीलता अपने में आत्म परीक्षण है। यह इस बात को समझना है व्यक्ति की बातों में कौन से तथ्य, कृपा या प्रलोभन है, क्योंकि बहुत बार बातें जो हमारे दिमाग में उड़कर आती हैं, वे प्रलोभने मात्र होती हैं जो हमें सही मार्ग में आगे बढ़ने से भटका सकती हैं। मुझे अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि यह क्या है जिसे दूसरा व्यक्ति मुझे बतलाने की कोशिश कर रहा है। जिस बात को अनुभव करने को वह मुझे कह रहा है, क्या वह उसके जीवन में हो रहा है। इस तरह के सवालों को स्वयं से पूछना मुझे उनके विचारों की प्रशंसा करने में मदद करता है, जिसके फलस्वरूप मैं उनके मनोभावों से वाकिफ होता हूँ। इस तरह का सुनना हमें पवित्र आत्मा की ओर से आने वाले विचारों को एकांत में आत्म परख करने की मांग करता है, जहाँ हम ईश्वर की ओर से आने वाली सच्चाई के साथ साथ दुष्ट आत्मा के फंदे को भी परखते हैं जो हम में कार्यविहीन प्रतिज्ञा मात्र करता है। यह हमसे साहस, सहृदय और चातुर्य की मांग करता है, जिसके द्वारा हम दूसरों को सच्चाई पहचानने और भ्रम या झूठों से बचे रहने में मदद करते हैं। तीसरे तरह की संवेदनशीलता वह योग्यता है जहां हम अपने में इस बात को समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति किन बातों से प्रभावित है। यह हमें और अधिक गहराई में सुनने की मांग करता है, जिसके द्वारा हम इस बात से वाकिफ होते हैं कि व्यक्ति वास्तव में किस मार्ग में आगे बढ़ने की चाह रखता है, वह वर्तमान में क्या अनुभव करता या क्या सोचता है। इसके अलावे जो कुछ भी उसके जीवन में अब तक हुआ है, हमारे लिए मुख्य बात यह आती है कि वह क्या बनने की चाह रखता है। यह इस बात की मांग करती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपनी छिछली इच्छाओं और चाहतों की खोज नहीं, वरन उन बातों की खोज करे जो ईश्वर को प्यारी हैं, जिन्हें वे उसके जीवन की योजना बनाना चाहते हैं। यह हमारी इच्छा और अनुभवों से बढ़कर हमारे हृदय की एक गहरी चाह है। इस प्रकार का आत्म परीक्षण हमें जीवन के उद्देश्य से रूबरू कराता है और हमारे जीवन को एक अर्थ प्रदान करता है। यीशु हमारे हृदय के इस उद्देश्य को जानते और उस पर खुश होते हैं। वे हमारे साथ सदैव रहते और हमें उसे पहचानने में मदद करते हैं। हम उनसे यह कह सकते हैं, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझे बचाइए। आत्म परीक्षण हमारी आध्यात्मिकता की सच्ची लड़ाई में मदद करता है, जो हमें ईश्वर के प्रति निष्ठावान बनाए रखता है। हमारे व्यक्तिगत बुलाहट का ज्ञान हमें एक अलग ऊंचाई तक ले चलता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने को और अपने जीवन का सम्मान करते हैं। अच्छा आत्म परीक्षण स्वतंत्रता का एक मार्ग है, जो हमारे जीवन से एक विशेष फल उत्पन्न करता है, जिसे केवल ईश्वर जानते हैं। दूसरे इसे पूरी तरह नहीं जानते कि यह कैसे अपने में विकसित होता है। जब हम दूसरों को सुनते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जहां हम अपने को अदृश्य कर लेते हैं, जिससे व्यक्ति अपने सोचे और खोजे गए मार्ग में आगे बढ़ सके। हमें अपने में उसी भांति ओझल होने की जरूरत है, जैसे इमाउस में यीशु शिष्यों की नजरों से हुए, जो उनके हृदय को उद्दीप्त कर रहा था और वे अपने को समुदाय से संयुक्त करने हेतु रोक नहीं पाए। समुदाय लौटकर उन्होंने सचमुच यीशु के पुनर्जीवित होने की खुशखबरी सुनाई। समय अपने में शक्तिशाली होता है, अतः हमें अपने विचारों को दूसरों पर थोपे बिना उन्हें प्रोत्साहित करते हुए प्रक्रिया का अनुपालन करने की जरूरत है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए कारगर सिद्ध होती है जो अपने में सदैव अद्वितीय और स्वतंत्र हैं। आत्म परीक्षण कोई छोटा रास्ता नहीं है, यद्यपि चीजें अपने में सकारात्मक क्यों ना दिखती हों, सकारात्मक पक्षों को भी हमें ध्यान पूर्वक परखने की जरूरत है, जिससे वे अपने में अलग थलग और एक दूसरे के विपरीत ना हों, बल्कि एक दूसरे के साथ पूर्णतः और विषम परिस्थितियों में भी बने रहें। नकारात्मक पक्षों के साथ भी यही बातें लागू होती हैं। हम उन्हें खारिज ना करें, क्योंकि हर एक में कोई मूल्यवान बात छिपी होती है, जो स्वतंत्रता में सच्चाई को स्थापित करने की प्रतीक्षा करती है। संत पापा कहते हैं कि यदि हम किसी का साथ आत्म परीक्षण हेतु देते, तो हमें स्वयं सर्वप्रथम उस मार्ग में रोज दिन चलने की जरूरत है। माता मरियम ने अपने युवा काल में यही किया, जब वे सवालों और कठिनाइयों से अपने को घिरी हुई पाईं। वे अपनी प्रार्थनाओं के जरिए आपके युवा काल को नवीन बनाएं और उनकी मातृत्व में उपस्थिति सदैव आपके साथ रहे। अपने प्रेरितिक प्रबोधन के अंत में संत पापा युवाओं से पुनः कहते हैं, मैं अपनी खुशी में यही आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन की दौड़ में लगे रहें जो आपके सामने है। यीशु ख्रीस्त के चेहरे से आकर्षित होकर आप दौड़ते रहें, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिनकी आराधना हम परम प्रसाद में करते हैं और जिन्हें हम अपने भाई बहनों के दुखों में देखते हैं। पवित्र आत्मा इस जीवन की दौड़ में आपकी सहायता करे। कलिसक को आपकी गतिशीलता, अंतर्ज्ञान और आपके विश्वास की जरूरत है, और जब आप उस स्थान पर पहुँचे जहाँ आप नहीं पहुँचे हैं तो आप धैर्य में हमारी भी प्रतीक्षा कीजिए।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस के नए विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती का विश्व के कई हिस्सों में सहर्ष स्वागत किया जा रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के धर्मदर्शियों ने विश्व पत्र की महत्वपूर्ण अपील एकात्मकता एवं मानव भाईचारा पर प्रकाश डाला है। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 4 अक्टूबर को अपने तीसरे विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती को प्रकाशित किया, जो भाईचारा एवं सामाजिक मित्रता पर आधारित है। विश्व पत्र का स्वागत करते हुए ऑस्ट्रेलिया एकाधिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष मार्क कॉलरिज ने रविवार को एक बयान में कहा कि एक विश्व जो दिशा निर्देश के बिना वैश्विक महामारी के परे देख रहा है, वह उसे नए विश्व पत्र में पा सकता है, जो न केवल विश्वासियों के लिए बल्कि समस्त मानव परिवार के लिए है। उन्होंने कहा, यह हर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का दर्शन है, जहाँ से भाईचारा एवं समाज की एक नई संस्कृति के निर्माण हेतु निमंत्रण प्रवाहित होता है। महाधर्माध्यक्ष कॉलरिज इशारा करते हैं कि संत पापा का नया विश्व पत्र 2015 में प्रकाशित विश्व पत्र लाउदातो सी से भिन्न है, जिसमें उन्होंने आम घर पृथ्वी की देखभाल पर चर्चा की है, जबकि फ्रतेली तुत्ती में उन्होंने एक दूसरे तथा परिवार की देखभाल करने की बात कही है, जो एक ही आम घर में निवास करते हैं। उन्होंने गौर किया है कि संत पापा अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को स्वीकार करने के द्वारा हम भाईचारा के एक सार्वभौमिक आकांक्षा के पुनर्जन्म में योगदान कर सकते हैं। संत पापा सभी लोगों को एक ही मानव परिवार के सदस्य के रूप में कल्पना करते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी धरोहर, अपनी आस्था एवं धारणा को अपनी आवाज सभी भाइयों एवं बहनों के रूप में ला सकता है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा है कि संत पापा ने विश्व पत्र पर काम करना कोविड-19 महामारी से पहले शुरू किया था, जो एकात्मकता की अधिक आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डालता है और कई लोगों में, समुदाय में परस्पर निर्भरता की भावना एवं मानव प्राणी की अपने आप में दुर्बलता की भावना को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान विभाजन एवं संघर्ष आगे जाने के रास्ते नहीं हैं और उन पर रोक लगाए जाने के बाद हम उनके एवं वे जैसे शब्दों को नहीं बल्कि सिर्फ हमारा शब्द को सोच सकते हैं। महाधर्माध्यक्ष कॉलरिज ने उस विचारधारा के खिलाफ संत पापा के आह्वान को रेखांकित किया है, जो जोड़ने के बदले बांटने की कोशिश करता है, तथा आर्थिक प्रणाली जो व्यक्ति एवं ग्रह के ऊपर लाभ को प्राथमिकता देता है। खासकर उन्होंने उन लोगों की ओर इशारा किया है जिनका जिक्र संत पापा अक्सर किया करते हैं, महिला, बुजुर्ग, अजन्मे शिशु, आदिवासी और अप्रवासी, जिनको कम महत्व दिया जाता है और उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। माधव मदश ने कहा कि ऐसे लोगों को ऑस्ट्रेलिया में भी हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। अतः उन्होंने चेतावनी दी है कि संत पापा के संदेश को दुनिया के दूसरे हिस्से के लोगों के लिए है कि भावना से ना देखा जाए। अमेरिकी कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष जोस एच गोम्स ने कहा, अमेरिका की कैथोलिक कलीसिया की ओर से मैं मानव भाईचारा पर संत पापा के नए विश्व पत्र का स्वागत करता हूँ। इससे पहले लौदातो सी के समान ही फ्रतेले तुत्ती सामाजिक धर्म शिक्षा की कलीसिया की समृद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि विश्व पत्र में संत पापा की शिक्षा प्रगाढ़ और सुंदर है, जो दिखलाता है कि ईश्वर ने सभी मानव जाति की समान पौत्रता, प्रतिष्ठा, समान अधिकार एवं कर्तव्य के साथ सृष्टि की है। ईश्वर ने हमें बुलाया है कि हम एक ही मानव परिवार का निर्माण करें, जिसमें हम भाई और बहन के रूप में जी सकें। संत पापा फ्रांसिस ने 6 अक्टूबर के ट्वीट संदेश में भाईचारा में बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा, यह मेरी लालसा है कि इस समय प्रत्येक मानव व्यक्ति की प्रतिष्ठा को पहचानते हुए हम भाईचारा के लिए सार्वभौमिक आकांक्षा के पुनर्जन्म को सहयोग दें। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, आइए हम एक ही मानव परिवार का सपना देखें। सहयात्री के समान एक ही शरीर, एक ही पृथ्वी के बच्चों के समान हम प्रत्येक अपनी आस्थाओं और धारणाओं की समृद्धि को एक साथ लाएं। हर एक अपनी आवाज के साथ, सभी भाई और बहनें। संत पापा फ्रांसिस के नए विश्व पत्र फ्रतेले तुत्ती के प्रकाशन पर अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तायब ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रविवार को अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तायब ने ट्वीट पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रतेले तुत्ती पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, मेरे भाई संत पापा फ्रांसिस के संदेश फ्रतेले तुत्ती मानव भाईचारा पर दस्तावेज का विस्तार है और वैश्विक सच्चाई को प्रकट करता है, जिसमें कमजोर एवं हाशिए पर जीवन यापन करने वाले अस्थिर स्थिति एवं निर्णय की कीमत चुकाते हैं। यह एक संदेश है जो भली इच्छा रखने वाले लोगों के लिए है, जिनका अंतःकरण सक्रिय है और मानव चेतना को पुनर्स्थापित करता है। अंतायब ने संत पापा फ्रांसिस के साथ विश्व शांति एवं सहस्तित्व के लिए मानव भाईचारा पर दस्तावेज में फरवरी 2019 को अबू धाबी में हस्ताक्षर किया था। 14 अप्रैल 2021 को फिलीपींस अपने देश में पहले बपतिस्मा की यादगारी मनाएगी, जिसको उसने 500 वर्षों पहले ग्रहण किया था। महामारी के कारण फिलीपींस में क्रिस्तीय धर्म के आगमन के 500 साल पूरा होने के उत्सव को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी फिलीपींस के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के कार्यकारी अध्यक्ष कालूकन के धर्माध्यक्ष पाब्लो वर्चिलियो डेविड ने दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश में कोरोना वायरस महामारी की बढ़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्य समारोह अप्रैल 2021 को मनाया जाएगा और इसके साथ साल भर मनाए जाने वाले समारोहों का उद्घाटन किया जाएगा। पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैग्नल के आगमन के साथ 1521 में फिलीपींस में ख्रिस्ती धर्म का प्रसार हुआ था, जिसने पश्चिम नौकायान द्वारा पूर्व तक पहुंचने के अभियान के रूप में और फिलीपींस में धर्म की शुरुआत के प्रतीक स्वरूप बौद्ध क्रूस स्थापित किया था। झारखंड में गरीब आदिवासी बच्चों के लिए समर्पित बेल्जियन जेसुइट मिशनरी फादर लुइस फ्रैंकन का निधन 5 अक्टूबर को रांची में हुआ। वे 82 साल के थे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।